रफ़ा हाजत के मसाइल, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 30 है, मसला नंबर 18 को ही दोबारा दोहरा लेते हैं। रास्ते और साए की जगह में रफ़ा हाजत करना मना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोगो, लानत के दो कामों से बचो। सहाबे कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, लानत के वो दो काम कौन से हैं? आपने फरमाया, लोगों की गुजरगाह और सायादार जगह पर रफ़ा हाजत करना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो इस हदीस से इस्लाम का मिजाज समझ में आता है। और एक और हदीस जिसका खुलासा है कि ला दररा वला दरार, ना तुम किसी को तकलीफ दो और ना कोई तुमको तकलीफ दे, ये असूल बहुत अच्छी तरह समझ आता है। और इस्लाम का जो मफहूम है वो यही है कि इंसान किसी के लिए दुख और तकलीफ़ का सबब ना बने। तो लिहाजा ख़ुद कोई ऐसा काम करना या अपने जानवरों को जो पेट्स होते हैं उनके ज़रिए करवाना, बच्चों को रास्तों में फारिग करवा देना। अब रास्ते से मुराद सिर्फ बाहर सड़क का रास्ता नहीं है, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हॉल्स हो सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, किसी शॉपिंग मॉल में गए। और अब यहाँ तो हम कर नहीं सकते ना, लेकिन अमूमन जहाँ मौका मिल जाए तो बाहर दीवार के साथ या किसी पार्किंग लॉट में किसी ऐसी जगह पे कोई भी गंदगी फैलाना, हत्ता कि इंसान अपनी कोई बची खुची चीज़ें फेंक दे, कूड़ा फेंकना, ये सारी चीज़ें कम से कम एक मुसलमान का मिजाज तो नहीं होती। और आप देखिए कि आप जब जमा, इसका एक बहुत आसान सा तरीका ये कि आप अपने पास एक छोटा सा बैग रखा करें। मैं जब भी कभी ट्रैवल करती हूँ बाय रोड, तो मैंने गाड़ी में भी एक छोटी सी डस्टबिन बनाई होती है, यानी एक छोटा सा लिफाफा है, अब उसको कोई एक मुनासिब जगह हैंडल है या उसके साथ लटका दें। कोई भी चीज़ रास्ते में, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, पेपर्स आपके एक्स्ट्रा हैं, वो कोई खा रहे हैं, कोई चीज़ है जो बचे वो उसमें डाल दें। फिर जहाँ कहीं भी गाड़ी के लिए मतलब स्टॉप आप लेते हैं तो वहाँ उसको पकड़ के ट्रैश बिन में फेंक दें। हमारे यहाँ एक मिजाज है, शीशा खोला बाहर फेंक दो, पहले इधर उधर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। हाँ, लेकिन आप देखिए कि क्या इंसान की अपनी नज़रों में कोई इज्जत नहीं है। बस इस जुमले को सोचेंगे ना तो फिर आप हर वो काम करेंगे जिससे आप अपनी नज़रों में इंशाल्लाह ताला बुलंद होंगे। अगला मसला है, देखते हैं। इस्तंजा करने के लिए मिट्टी के कम से कम 3 ढेले या पानी इस्तेमाल करना चाहिए। गोबर और हड्डी से इस्तंजा करना मना है। इस्तंजा कहते हैं रेस्टरूम यूज़ करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को धोना या साफ़ करना, ठीक है। और इसमें भी लफ्ज़ देखें तो इस्तंजा में नून जीम वाव है, नजात पाना, जैसे नजात का लफ्ज़ है ना, यानी अपने आप को पाक करना या उस चीज़ से फराग़त हासिल करना जो इंसान को ज़रर दे रही थी। तो 3 ढेले या पानी इस्तेमाल करना, इसकी दलील क्या है? हज़रत अनस रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो मैं और मेरी उम्र का एक दूसरा लड़का पानी का लोटा और बर्छी उठाकर आपके साथ जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के बाद पानी से तहारत करते। इसे सही बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। इस हदीस से दो तीन बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो ये है कि उस दौर में इस तरह की सहूलत नहीं थी कि लोग घरों में ही इन चीज़ों से फारिग हो जाएं। और इसी से आप देखिए कि एक लाइफस्टाइल भी समझ में आता है। बिलफर्ज़ आप ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आज के दौर में भी घरों में रेस्टरूम ना होते और आपको कहीं बाहर जाना हो, तो क्या किसी के लिए मुमकिन है कि जितनी दफ़ा अब हम रेस्ट रूम में जाते हैं उतनी दफ़ा जाएं? आप सोचें, एक ऐसी औसत दर्जे पे मैं एक दिन में कितनी दफ़ा रेस्ट रूम यूज़ करती हूँ, यानी ऑफ कोर्स वज़ू या दूसरे काम अलग हैं, सिर्फ़ अपने आप को फ़ारग करने के लिए। अब एक बंदा जिसको ये पता हो कि मुझे हर बार घर से बाहर जाना होगा, और उस वक्त में नबी सल्लम के दौर में औरतों का अमल क्या होता था कि जब रात का अंधेरा हो जाता था, बिल्कुल शाम का मलगजा या बिल्कुल सुबह उस वक्त जाती थी पर्दे के ख्याल से, और कुछ एक किस्म की बांट थी, मर्द उस वक्त जाएँ तो औरतें उस वक्त जाएँ, और अमूमन फिर औरतें अकेली नहीं जाती थी, एक दो खवातीन मिल के जाती थी। तो आप देखिए कि इससे खुद ब खुद फिर खाने पीने पे काबू आ जाएगा ना। हमारे पास चूँकि खाना बेहिसाब होता है तो हम उसको खाते रहते हैं, फिर उसके साथ दूसरा भी इस्तेमाल होता है, तो एक चीज़ दूसरी चीज़ का रास्ता खोलती है। आज भी आप देखिए कि दुनिया के कुछ ऐसे मुल्क हैं, मुझे किसी ने बताया और मैंने एक जगह ख़ुद भी जाके देखा कि वो घरों के अंदर कमरों के साथ रेस्ट रूम या टॉयलेट बनाना इसको नापसंद करते हैं, क्योंकि एक तो तसव्वुर वही बात कि ये गंदगी का है। हालांकि आजकल साफ़ भी होते हैं, लेकिन एक तहारत का एक जहन जब होता है तो वो इस तरह से कि रेस्टरूम के बिल्कुल अंदर ये होगी चीज़, फिर घर के बिल्कुल बाहर बनाते हैं। एक जगह मैं गई तो वहाँ घर ही 200-300 साल पुराने हैं, इवन बास बिल्डिंग्स के ऊपर लिखा हुआ है, गो के इस वक्त वो इतने रेनोवेटेड हैं कि बिल्कुल अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनके अंदर का सेटअप मुझे बहुत ही उसमें दो तीन चीज़ें अपील की। एक तो ये था कि रेस्टरूम बिल्कुल घर के पीछे, यानी जैसे पूरे कमरे यहाँ यहाँ है ना, तो बीच में आप समझे बैकयार्ड है, ये लग बात है अब उसको उन्होंने कवर करके तो एक हॉल टाइप कर लिया, लेकिन बिल्कुल पीछे है। और बस उन्होंने मुझे बताया जो मेरी होस्ट थी कि ऐसे भी घर है यहाँ कि घर के अंदर से रेस्टरूम में जाने का कोई तसव्वुर नहीं है, बाहर से अलग जाना पड़ता है, घर का हिस्सा लेकिन बाहर से दूर जाना पड़ता है, मिलाना पसंद नहीं करते। फिर दूसरी चीज़ उसमें मुझे उन्होंने बताई कि पूरे घर में सिर्फ एक टेलीफोन की लाइन है, स्विच है, और मोस्टली वो किचन के साथ है। फिर इलेक्ट्रिक का जो मेन, जैसे जहाँ हम अपनी ये लगाते हैं इलेक्ट्रिक का प्लग, वो भी सम ऑफ प्लेसेस पे बस एक है, हालांकि बहुत इस वक्त भी तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो वो क्यों ऐसा है, क्योंकि घर इतने पुराने हैं। अब उन्होंने उससे कोशिशें कर करके उसके रेनोवेशंस की, इस वक्त भी वहाँ जाके जब मैंने इंटरनेट यूज़ करना चाहा तो बहुत मुझे प्रॉब्लम हुई, क्यों, कि उसकी जो बिल्डिंग और दीवारें हैं वो कंक्रीट के और बहुत हैवी मटेरियल से बनी हुई है। तो वक्त के साथ साथ आप देखिए कि ये सब हो रहा है, और मुझे ये बात कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये तो एक सहूलत है, अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि क्या फिर अटैच बात नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, अगर आप एक घर में चंद मुख्तलिफ लोग हैं, फैमिलीज हैं, तो प्राइवेसी का मामला है, शर्त ये कि आप उसको साफ़ रखें, फर्स्ट थिंग, सबसे पहली। दूसरी बात, उसका डोर लॉक करें, बंद रखा करें। बाद लोग ना समझी से डोर खुला छोड़ देते हैं, ये कभी भी ना करें, ठीक है। फिर एक और चीज़, यानी इसमें जो मैंने देखी और मुझे किसी ने ईमेल भेजी, कि ये एक सोच के एक तसव्वुर गंदा आता है ना, लेकिन एक ऐसा रेस्टोरेंट बना है दुनिया के बहुत ज़्यादा, जिसको आप कह सकते हैं कि पॉपुलर कंट्री में, कि पूरा जब आप रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं ना, तो वो एक किस्म का टॉयलेट, उसकी डिज़ाइनिंग टॉयलेट की है, जो कुर्सियाँ जिस पर, मतलब है नहीं टॉयलेट वो ऑफ कोर्स, लेकिन जिन कुर्सियों पे बैठते हैं लोग खाना खाने के लिए, वो बिल्कुल टॉयलेट की सीट्स हैं, और जो पानी डालने की चीज़ें, लोटे, यानी बिल्कुल आप देखेंगे एक बहुत बड़े टॉयलेट में जहाँ सब लोग, और रियली इतना बैड फीलिंग आई जब मैंने देखा कि सब लोग बैठे हुए थे, तो फर्स्ट टाइम में तो यही लगता है कि लोग अपनी ज़रूरत से फारिग हो रहे हैं। ये गंदे मिजाज की अलामत होती है कि बग़ैर सोचे समझे ऐसी चीज़ों को इंसान अपनाने लगे। फिर उसके बाद आप देखिए कि दूसरी चीज़ इस हदीस से जो पता चलती है कि एक बुज़ुर्ग या कोई मर्तबे में बड़ा शख्स है कोई भी, तो वो अपनी खिदमत के लिए साथ दूसरे को रख सकता है। अब इस हदीस से ये नहीं समझ आता कि अल्लाह के नबी ने उनको कहा था कि ये करो, लेकिन हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो की ये अल्लाह ताला ने उनको ये अच्छी शान दी या खुशकिस्मती है कि ये नबी सल्लम के खिदमत गुजार थे। यानी कुछ लोग होते हैं जो दूसरे काम करते हैं, लेकिन ये आपके ज़ाती कामों के लिए थे। और जब नबी सल्लम हिजरत करके मदीना में आए, तो हर एक ने अपना दामन खोल दिया, किसी ने किसी भी तरह से जो भी भाईचारा हुआ, लेकिन उम्मे सुलेम नाम की एक औरत थी, तो वो अपने इस बेटे को लेके आई, 10 साल के थे उस समय उम्र में, तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा आपकी सोहबत में रहे, आप इसको अपना खादिम खास बनाएं, इनका लकब है खादिम खास, तो ये आपके साथ रहते थे, और इनको अल्लाह के नबी ने इतनी दुआएं दी थी कि ये सबसे बाद में फौत होने वाले सहाबा में से हैं। जब फौत हुए तो 90+ इनकी एज थी, और इनकी इनकी नस्ल में तकरीबन 100 या 90 के बिटवीन हाफिज़े कुरान थे। तो जो बंदा साथ रहता है ना, वो दुआएं लेता है, एक बात है। फिर दूसरी बात है कि इससे इज्जत की बात भी है, पानी लेके गए इस्तेमाल के लिए, बर्छी क्यों लेके गए, सवाल पैदा होता है। इसके दो तीन वजूहात हो सकती हैं। पहली चीज़ है कि ज़मीन को थोड़ा सा उस वक्त में लोग नरम कर लेते थे, छींटों से बचने के लिए थोड़ी सी घड़ा सा खोद लिया, ताकि जब कोई इंसान फारिग हो तो उसके छींटे उसके अपने कपड़ों पर ना पड़े। फिर दूसरी वजह ये भी होती थी कि बर्छी से फिर इधर इर्द गिर्द की मिट्टी से उस जगह को कवर कर देते थे। और तीसरी ये भी हो सकता है कि दूर जंगल था या खुली जगह थी, तो कोई जानवर अगर वहाँ हो तो नुकसान ना दे। तो इससे बहरहाल ये चीज़ समझ में आती है कि, लेकिन ऑफ कोर्स उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बीच में पर्दा होता था। एक चौथा भी मकसद बर्छी का होता था, और वो क्या था कि बाज़ दफ़ा चादरें साथ ले जाते थे, तो वक्ती तौर पर जैसे पर्दा लगाने के लिए वो बर्छी के साथ यानी सोचें कि बर्छी की जो नोक है उसके अंदर कपड़े को अटका के ज़मीन में डाल देते थे, तो गोया के पर्पस के लिए था, और उसमें कई उसे कई किस्म के फ़वाद लिए जाते थे। फिर अगली हदीस से कुछ और बात भी इसी की समझ आएगी। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अनहो से अज़राह तमस्खुर, यानी मजाक उड़ाते हुए, फ़न बनाते हुए उनका कहा गया, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हर चीज़ की तालीम दी है, हत्ता के पेशाब और पाखाना की भी। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हों ने कहा, हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रफ़ाए हाजत करते वक्त किबले की तरफ मुंह करने से मना फरमाया है। इस्तंजा करते वक्त दायां हाथ इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। तीन पत्थरों से कम में इस्तंजा करने से मना फरमाया है। नीस गोबर और हड्डी के साथ इस्तंजा करने से मना फरमाया है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। इससे भी बहुत सारी बातें हैं सीखने की। पहली बात है कि इंसान को ऑफेंसिव होने की बजाय डिफेंसिव होना चाहिए। अब उर्दू में बोलती हूँ, यानी इंसान को दिफाई अंदाज इख्तियार करने की बजाय इकदामी अंदाज इख्तियार करना चाहिए। ये भी मुश्किल है क्योंकि ना हमें इंग्लिश आती है ना उर्दू आती है। कि बस दफ़ा क्या होता है कि कोई हमारा मजाक उड़ाता है इस्लाम की वजह से या मुसलमान होने की वजह से, और हम दिफाई अंदाज इख्तियार कर लेते हैं। नहीं 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 एक्चुअली एक्चुअली दिस नो 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 इज़ नॉट द मैटर। ये होता है आप दिफा कर रहे हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं करो। और दूसरा होता है हाँ क्यों नहीं, जो बात उसने किया उसी को दे, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप देखिए अगला बंदा ढीला होगा। जहाँ ज़िंदगी के किसी मामले में भी, सिर्फ इस्लाम की बुनियाद नहीं और बहुत सारे भी मैटर्स होते हैं, जहाँ आप दिफा पे आ जाएंगे ना तो अगला आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, और जहाँ आप सामने खड़े होने के काबिल होंगे ना, क्या कहा, तो अगला बंदा बिल्कुल ठीक होके खड़ा हो जाएगा। कोई भी आप पे ज्यादती नहीं करेगा इंशाल्लाह, और आप लोगों को ज्यादती का मौका भी नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में बढ़नी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा कायद, रहनुमा, नबी और उस्ताद दिया कि जो हमें छोटी छोटी बातें भी बताते हैं। फिर तीसरी बात यह है कि किबले की तरफ मुँह करने से मना फरमाया। ये एक बेअदबी की बात थी, इसलिए किबले की तरफ मुँह करके जान के फारिग होना ये एक दुरुस्त बात नहीं थी, क्योंकि किबला शायरिल्ला में से है और कुरान पाक में आता है कि अल्लाह के शायर जो हैं उनकी तुम तअज़ीम करो। फिर अगली बात इससे पता चलती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो दो हाथ दिए हैं उसका कोई मकसद है। ये भी तो हो सकता था ना हमारा एक ही हाथ होता, लेकिन दो हैं तो फिर दायां और बायां दोनों को फ़र्क काम दिए। जैसे कि एक को दूसरे के ऊपर हाकिम बनाया, तो दायां हाथ खाने के लिए है और बायां हाथ गंदगी के लिए। जो लोग दोनों काम एक ही हाथ से कर लें, तो आप सोचिए कि कहीं अगर खुदा न खास्ता गंदगी का कोई असर नाखून में फंस गया, अगर जो लोग साथ सीधे हाथ से फारिग हो या अपने आप को साफ करें, तो उसके बाद कोई ज़र्रा नाखून में चला गया और आप उसी हाथ से कुछ खाने लग गए, तो सोचिए कि कहाँ आपने अपनी गंदगी को, मतलब आप एक बहुत ही गैर मुहज्जब सा तरीका लगता है। फिर तीन पत्थरों से कम पे क्यों, इसलिए कि तीन से कम से तहारत होनी मुमकिन नहीं होती, या कभी कभी इंसान का अपना दिल भी मुतमईन नहीं होता। फिर मिट्टी के साथ क्यों कर सकते हैं, इसलिए कि मिट्टी के अंदर एक तो बात यह है कि एंटीसेप्टिक होती है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे जिस्म से निकलते हैं, अल्लाह ताला ने उनको किल करने का जो मादा है ना वो मिट्टी में रखा हुआ है। ये एक फितरी निज़ाम था। साबुन तो आज आए, हैंड सोप और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मिट्टी में कुदरती तौर पे जरासीम को ख़त्म करने के तरीके होते हैं। फिर दूसरी बात है कि मिट्टी एब्जॉर्बिंग होती है, जज्ब करती है। जिस्म से कोई भी रतूबत या गंदगी निकलती है तो जब मिट्टी से उसको हम साफ़ करते हैं तो वो उसको जज्ब कर लेती है। अगली बात क्या है कि गोबर और हड्डी से क्यों ना किया जाए। पहली बात है कि गोबर जो होता है सख्त होता है, इसके अंदर जज्ब की कैफियत नहीं होती। ये तो ऐसी है जैसे कोई एक ठीकरी आप उठा के उससे साफ़ करें कच्ची मिट्टी की जगह। फिर दूसरी बात यह कि गोबर भी जानवरों का वेस्ट होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ जर्म्स होंगे जो हमारे जिस्म से टच करेंगे तो तकलीफ़ होगी, और ऑफ कोर्स इसमें बदबू भी होती है। और हड्डी जो है, इसके बारे में एक और हदीस में आता है कि आपने फरमाया कि ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है, और हो सकता है कोई दूसरा जानवर ही उस हड्डी को खाना चाहे और हमारी गंदगी की वजह से वो उसको हमसे दूर कर दे, यानी उससे वो दूर हो, तो इसलिए इन चीज़ों से मना किया गया। अब इससे दलील लेकर आप के जहन में एक सवाल होगा, तो बजाय इसके कि अलग अलग पीछे एंड पे सवाल करें, हम साथ ही देख लें कि क्या फिर ज़रूरत के वक्त में टॉयलेट पेपर यूज़ किया जा सकता है। कभी भी आप पब्लिक प्लेसेस पे हैं, ट्रैवलिंग में हैं, जहाज़ों में हैं, कहीं भी हैं, तो अपने आप को कैसे पाक करें, उसका क्या तरीका है, क्या हम अपने साथ हर वक्त मिट्टी रखें या अपने पास पानी रखें या फिर वहाँ कुछ करें। तो पहली बात है कि मुसलमान हमेशा जो इस तरह का फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आने वाले वक्त के लिए पहले तैयारी करें। आपको पता है कि आप ट्रैवल करने लगे हैं और टॉयलेट्स में पानी नहीं होगा, पानी तो होता है बेसिकली फ्लश में लेकिन ओपन वाटर नहीं होता। उसका सिंपल जो इजीएस्ट तरीका है वो तो क्या, बस लोग कहते कप रख लेते हैं, बाज़ लोग कोई ऐसी बर्तन साथ रख लेते हैं, लेकिन हर जगह ये मुमकिन नहीं होता। और हम ख्वाब अपने आप को मजाक में बाज़ कहने जी हम तो लोटा ही साथ रखेंगे, अब वो कितनी जगह वो जाएगा और कितनी जगह खुलेगा, कितने स्कैनर्स में से गुजरेगा, और आप उसको हाथ में ही रखेंगे ना, बंद तो नहीं करेंगे। तो वो भी एक इस्लाम का एक बैड इमेज होगा, कोई सिर्फ उसको देख के हंसी पड़ा तो समझे कि उसके दिल में इस्लाम के लिए गिरा लग गई। मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल चीज़ जो मुझे फील होती है कि जो प्राइवेट भी रहती है और उससे काम भी चलता है, ज़िपर बैग्स होते हैं आपके पास घरों में, जैसे प्लास्टिक के छोटे छोटे लिफाफे होते हैं जिसमें आप अपना एक्स्ट्रा खाना सेव करते हैं, सैंडविच बैग जिसको बोलते हैं, आप 5, 6, 7 भी अपने पर्स में उसको रख लें रैप करके, कोई मसला नहीं है। आपके पर्स में था, जूं ही आप गए बाहर सिंक से आप उस एक बैग को भर लें, पूरी जिप बंद कर लें। जिप से मेरा ये नहीं कपड़े वाली जिप, वो आप जो यूज़ करते हैं उनको पता है, पूरा उसका बंद करें, आखिरी कोना हल्का सा खुला होगा, जब आप यूज़ करेंगे बिल्कुल लोटे की तरह इस्तेमाल होगा, वहाँ इस्तेमाल करें और फेंक के बाहर आ जाएं, बस इतनी सी बात है। बाकी फिर इसके अलावा जैसी भी ज़रूरत हो, हाँ अगर ये कुछ भी ना हो, बिलफर्ज ये भी नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? पहली बात है कि बवक्ते ज़रूरत, यानी आप अगर पूरी तहारत कर लेते हैं नैपकिन से भी तो हो जाती है, आप अपनी नमाज ना छोड़ें उसकी वजह से कि आपकी नमाज नहीं हुई। फिर एक और उससे भी ज़्यादा चीज़ हो सकती है जो सुनने में थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, लेकिन अगर आप अकल से सोचें तो वो सही है। वो कह के जब आप अंदर जाते हैं तो मोस्टली आप देखिए कि टॉयलेट बहुत क्लीन होते हैं यहाँ, बल्कि बाज़ तो ऐसे हैं कि जो ही कोई यूज़ करके उठता है तो एकदम फ्लश होता है और वो ब्लू सा पानी निकल के सब जर्म्स निकलते हैं। आप कुछ भी ना इनमें से कर सकें, टॉयलेट पेपर कुछ थोड़े से लें, आप बैठने से पहले एक दफ़ा फ्लश करें और फ्लश के साथ वो नैपकिन गीले कर ले अंदर से, बिल्कुल साफ़ पानी होता है। यही अमल आप बाहर से भी कर सकते हैं सिंक से, और उस गीले नैपकिन को रख लें, थोड़ा सा खुश्क यूज़ करें, फिर एंड पे गीले के साथ करके तो अपनी तसल्ली कर लें। लेकिन इन बातों की बुनियाद बना के ये कहना कि मैं अब नमाज़ नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैंने बाहर टॉयलेट यूज़ किया था, तो ये सारी चीज़ें इसकी इजाज़त नहीं है।